रूप विकार की दिशाएं। प्रायः रूप विकार के फलस्वरूप भाषाओं में या तो कोई नवीन शब्द या पद अनुपयोगी होकर पूर्णतया नष्ट हो जाता है या कुछ नए शब्दों या पदों का विकास हो जाता है। ये दोनों स्थितियां संसार भर की भाषाओं में देखी जाती हैं। इसी कारण यह सिद्ध है कि रूप विकार की भी दो दिशाएं होती हैं, पहला अनुपयोगी रूपों का विनाश, दूसरा नवीन रूपों का विकास। पहला अनुपयोगी रूपों का विनाश। प्रायः भाषाओं में जब भिन्न भिन्न अर्थों को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तब लोगों के मस्तिष्क में यह प्रवृत्ति जागृत होती है कि भिन्न भिन्न रूपों या शब्दों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाए, जिससे अधिक शब्दों को स्मरण न रखना पड़े तथा बोलने में भी सुविधा हो जाए। लोगों की यह सहज प्रवृत्ति अनेक ऐसे रूपों का विनाश कर डालती है जो उनकी दृष्टि में अनुपयुक्त होते हैं या जो स्मरण रखने या बोलने में बाधा उत्पन्न किया करते हैं। यह विनाश का कार्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के रूपों में पर्याप्त मात्रा में देखा जाता है, जिसका विवेचन नीचे किया जाता है। क, संज्ञा रूपों का विनाश। पहले संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के षष्ठी एकवचन में पुत्रस्य, सर्वस्य, रामस्य, बुद्धस्य आदि रूप बना करते थे। इकारांत पुल्लिंग में के षष्ठी एकवचन में अग्नेह, हरेह, रवेह, कवेह आदि रूप बना करते थे और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के षष्ठी एकवचन में वयोह, शंभोह, विष्णोह, भानोह आदि रूप बना करते थे। जब प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ तब लोगों के मस्तिष्क में उक्त रूपों के अंतर्गत एक रूपता लाने का प्रयास हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूपों के समान ही इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी बनाए जाने लगे। इससे संस्कृत के अकारांत पुल्लिंग शब्दों के षष्ठी एकवचन के रूप पुत्रस्य, सर्वस्य, बुद्धस्य आदि के आधार पर प्राकृत भाषा में क्रमशः पुत्रस्य, सब्बस्य, बुद्धस्य सब रूप बने और इनके ही समान इकारांत और उकारांत शब्दों के रूप भी बनाए जाने लगे, जिसे संस्कृत इकारांत अग्नेह का प्राकृत रूप अग्निस हो गया और संस्कृत उकारांत वायो का रूप वाउस हो गया। इस प्रकार इकारांत और उकारांत के भिन्न भिन्न रूपों के स्थान पर अकारांत के समान रूप ही जीवित रहे और इकारांत तथा उकारांत के संस्कृत रूपों का विनाश हो गया। इसी प्रकार संस्कृत में जो पुल्लिंग संज्ञा पद पहले अकारांत थे वे अब भ्रंश काल में आकर सभी उकारांत ही गए, जैसे नरु, देव, पुत्तु आदि। इसी आधार पर एक रूपता लाने के लिए फिर नपुंसक लिंग के संज्ञा पदों को भी उकारांत बोलने की प्रवृत्ति चल पड़ी, जिसके फलस्वरूप संस्कृत के फलम जैसे रूप भी अभ्रंश में आकर फलु हो गए और प्राचीन रूप का विनाश हो गया। ऐसे ही संस्कृत में तृतीय एकवचन के अंतर्गत आ विभक्ति लगाकर रूप बनाए जाते थे, अतः हस्तिन शब्द में आ विभक्ति लगाने से उसका तृतीय एकवचन में हस्तिना रूप बना और मति, पति, मुनि, भानु आदि शब्दों में आ विभक्ति लगाने पर क्रमशः मत्या, पत्या, मुन्या, भानवा रूप बनने चाहिए, किंतु हस्तिना के समान ही इन शब्दों के रूप भी क्रमशः मतिना, पतिना, मुनिना, भानुना आदि बोले जाने लगे। या ना वाला रूप इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि और रूप इसके सामने न ठहर सके और उसका विनाश हो गया। इसी तरह संस्कृत में जितने भी नकारात्मक शब्द थे वे हिंदी भाषा में आकर सब अकारांत या अकारांत हो गए, जैसे राजन, युवन, पथिन, पंचन, सप्तन, दशन आदि। क्रमशः राजा, युवा, पंत, पांच, सात, दश आदि। इस तरह नकारांत शब्दों का हिंदी में आकर सर्वथा विनाश हो गया और उनके स्थान पर अकारांत या आकारांत शब्द ही जीवित रह गए। अतः यह सिद्ध है कि समय के प्रवाह में अनेक संज्ञा रूप अनुपयोगी होने के कारण लुप्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है या विनाश हो जाता है। ख, सर्वनाम रूपों का विनाश। संस्कृत सह पद जिस शब्द से बना है उसी से पहले उसका पंचमी एकवचन का रूप सस्मात् तथा उसका सप्तमी एकवचन का रूप सस्मिन् बनता था और तस्मात् तथा तस्मिन् रूप किसी दूसरे शब्द से बने थे, किंतु कालांतर में पहले रूप अनुपयोगी होकर नष्ट हो गए और उनके स्थान पर पंचमी एकवचन में तस्मात् तथा सप्तमी एकवचन में तस्मिन् रूप ही जीवित रह गए। संस्कृत में तद शब्द का पुल्लिंग एकवचन में सह, स्त्रीलिंग एकवचन में सा और नपुंसक लिंग एकवचन में तत् रूप बनता है, किंतु हिंदी में आकर लिंग भेद के अनुसार बनने वाले ये रूप एक रूपता को प्राप्त हो गए और उनके स्थान पर केवल एक पुल्लिंग एकवचन का रूप वह ही शेष रह गया तथा शेष स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग वाले सदैव के लिए नष्ट हो गए। जैसे सह पठति हिंदी में वह पढ़ता है यानी पुरुष के लिए, सा पठति वह स्त्री यानी पढ़ती है, तत् सुंदरमस्ति वह सुंदर है यानी यह वस्तु के लिए। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृत सर्वनाम तत् के तीन रूपों के स्थान पर हिंदी में केवल वह रूप ही जीवित रहा तथा अन्य रूपों का प्रचार हिंदी में नहीं हो सका। इसी तरह संस्कृत में यद तथा किम सर्वनाम के रूप भी तीनों लिंगों में मिलते थे, किंतु हिंदी में आकर इनके क्रमशः जो और कौन सर्वनाम के रूपों में केवल संबंध कारक के अंतर्गत तो लिंग भेद मिलता है, किंतु अन्य कारकों में कहीं भी लिंग भेद शेष नहीं रहा और वे रूप भी नष्ट हो गए हैं। ग विशेषण रूपों का विनाश। रूप परिवर्तन का प्रभाव विशेषण पदों पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। पहले संस्कृत में अकारांत पुलिंग विशेषण में विशेष के अनुसार लिंग वचन और कारक का प्रयोग होता था, जैसे सुंदर बालक, सुंदरो बालको, सुंदरा बालका, सुंदरम बालकम, सुंदरान बालकान, सुंदरेण बालकीन, सुंदराभ्याम बालकाभ्याम, सुंदरह बालकह आदि। किंतु हिंदी भाषा के विकास के साथ साथ अकारांत विशेषण के साथ केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन ही थी जो शेष रही, किंतु अन्य सभी व्यक्तियों एवं वचनों को अनुपयोगी समझकर छोड़ दिया गया। इसलिए आजकल हिंदी में अकारांत विशेषणों में केवल प्रथमा एक वचन की विभक्ति का ही सभी कारकों में होता है, जैसे सुंदर बालक, सुंदर बालकों, सुंदर बालक के द्वारा, सुंदर बालक के लिए, सुंदर बालक का, सुंदर बालकों की बातें, सुंदर बालक पर, हे सुंदर बालक आदि। यहाँ आते आते अकारांत विशेषण की अन्य सभी विभक्तियों एवं वचनों का पूर्णतया नाश हो गया है। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में विशेष के लिंगानुसार अकारांत विशेषणों में भी सभी लिंगों का प्रयोग होता था, जैसे सुंदर बालक, सुंदरी बालिका, सुंदरम पुस्तकम। यहाँ पुल्लिंग बालक बालक के साथ सुंदर विशेषण भी पुल्लिंग में आया है। बालिका के स्त्रीलिंग होने के कारण उसका विशेषण सुंदरी भी स्त्रीलिंग हो गया है और नपुंसक लिंग पुस्तकम के साथ उसका विशेषण सुंदरम भी नपुंसक लिंग हो गया है। यह व्यवस्था कुछ दिनों तक प्राकृत भाषाओं में भी चलती रही, परंतु हिंदी का विकास होते ही यह व्यवस्था परिवर्तित हो गई। हिंदी में अकारांत विशेषणों का पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप तो शेष रहा, वह सभी लिंगों में प्रयुक्त होता रहा, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर पुस्तक आदि। शेष स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग वाले विशेषण रूप अनुपयोगी होने के कारण विनष्ट हो गए। घ क्रिया रूपों का विनाश। रूप परिवर्तन का प्रभाव क्रियापदों पर भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा है। संस्कृत में पहले क्रियापदों के लिए दो पद आत्मनेपद और परस्मैपद प्रचलित थे। आत्मनेपद में क्रिया का फल स्वयं को मिलता था और परस्मैपद में क्रिया का फल दूसरे को मिलता था। उस समय यश के विधान के कारण ये दोनों प्रकार के पद प्रचलित थे, क्योंकि यज्ञ कराने वाले यजमान होते थे और होता अर्धवर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता आदि पुरोहित यज्ञ में सहायक होते थे। अतः यज्ञ का फल इन पुरोहितों को न मिले अपितु यजमान को मिले, इसी कारण आत्मनेपद की क्रियाएं प्रचलित थीं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उदय के साथ साथ यज्ञ क्रिया का भी लोप होने लगा, अतः पाली भाषा में आकर ही आत्मनेपद का प्रयोग हुआ, प्रयोग बहुत घट गया। पाली में अधिकतर परस्मय पद का ही प्रयोग मिलता है, केवल कुछ स्थानों पर ही आत्मनेपद शेष रह गया है। इस प्रकार परस्मय पद की क्रियाओं तो उपयोगी होने के कारण जीवित रहे, जबकि आत्मनेपद की क्रियाओं का विनाश आरंभ हो गया। संस्कृत की क्रियाओं में पहले 10 लकार प्रचलित थे। लट यानी वर्तमान का, लोट यानी आज्ञा के संदर्भ में, लिंग यानी विधि, लंग यानी अनद्यतन भूत, लिट परोक्ष भूत, रिंग सामान्य भूत, लुट अनद्यतन भविष्य, लिट सामान्य भविष्य, आशीर्लिड आशीह, रिंग क्रियाधिपत्ति। इन लकारों एवं कालों के अनुसार एक क्रिया के 180 रूप प्रचलित थे, क्योंकि प्रत्येक पद आत्मने और परस्मदय पद के प्रत्येक लकार या काल में तीन वचनों एवं तीन पुरुषों के नौ नौ क्रिया रूप बनते थे। सर्वप्रथम तो बाली भाषा में लकारों की संख्या कम होने लगी। एक तो यहाँ आते आते आत्मने पद के क्रिया रूप समाप्त होने लगे। आत्मने पद का प्रयोग पाली के कर्मवाच्य और कविता में ही शेष रह गया। अधिकांश स्थलों पर परस्मय पद की क्रिया के रूप ही प्रायः प्रयोग में आते थे। इसके अतिरिक्त पाली में 10 लकारों के स्थान पर केवल 7 लकार ही काम में आते थे और आर्षिलिंग और लुट और लंग लकार का प्रयोग समाप्त हो गया था, क्योंकि पाली में लंग और लुंग लकार के सभी रूप लंग लकार में ही विलीन हो गए थे। इस प्रकार पाली में आते आते एक ओर तो अनुपयोगी होने के कारण आत्मने पद का लोप हो गया, दूसरे द्विवचन क्रियाओं के रूपों का पूर्णतः विनाश हो गया और तीन लकारों की संख्या घट जाने से इन तीन लकारों के क्रियाओं के रूपों का विनाश हो गया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्रीय प्राकृत में आकर क्रिया के 10 लकारों में से केवल 4 लकार वर्तमान, आज्ञा, भविष्य और भूत ही शेष रह गए। लकारों के ह्रास की यह गति और भी तीव्र होती चली गई और हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, लहंदा आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में लकारों की संख्या घटती चली गई है। संस्कृत में पहले संपूर्ण क्रियाओं को 10 गुणों में विभाजित किया गया था, भवादि, अदादि, जोहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि गुण। क्रियाओं के ये भेद रूप रचना के आधार पर किए गए थे। पाली भाषा में आकर क्रिया के 10 गणों में से केवल 7 गण शेष रह गए थे और अदादि, ज्योत्यादि तथा तुदादि गुणों का समावेश भवादि गण में हो गया। महाराष्ट्र प्राकृत में आकर क्रियाओं के गणानुसार विभाजन की पद्धति ही लुप्त हो गई और सभी क्रियाओं के रूप साधारणतया भवादि गण के समान ही बनाए जाने लगे। अभ्रंश काल में आकर न केवल परस्मय पद और आत्मने पद संबंधी भेद ही लुप्त हुआ, अपितु क्रिया के गण भेदों का ही सर्वथा लोप हो गया और क्रिया के सभी रूपों की रचना भवादि गुण की क्रियाओं के अनुसार होने लगी। अतः यह स्पष्ट है कि प्राकृत और अभ्रंश काल में ही गणों के विभाजन की पद्धति को अनुपयोगी समझा जाने लगा था। जिससे पहले तो प्राकृत और अभ्रंश भाषाओं में ही गणों का लोप हो गया और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के क्रियाओं में से भी गणों के विभाजन की पद्धति का सर्वथा विनाश हो गया। दूसरा, नवीन रूपों का विकास। जहाँ भाषाओं में प्राचीन रूपों के विनाश का चक्र चलता है, वहाँ कुछ न कुछ नवीन रूपों के विनाश विकास की प्रक्रिया भी अवश्य चला करती है। अतः रूप विकार का जब एक भेद अनुपयोगी रूपों का विनाश है, तब दूसरा भेद उपयोगी नवीन रूपों का विकास भी है। यह विकास भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के विविध रूपों में दृष्टिगोचर होता है। जैसे क, संज्ञा रूपों का विकास। संस्कृत भाषा में पहले संज्ञा रूप दो प्रकार के मिलते थे, अजंत और हलंत। तदनंतर लिंगानुसार इनमें से प्रत्येक के तीन तीन भेद हो जाते थे, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग तथा हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। इस तरह संज्ञा के मुख्यतः 6 प्रकार के रूप संस्कृत भाषा में प्रचलित थे। हिंदी भाषा में आकर प्रथम तो संपूर्ण संज्ञा शब्द न तो अजंत रहे और न हलंत, अभी तो सभी स्वरांत हो गए। जैसे संस्कृत के राम, कृष्ण, विश्व, बालक आदि तो स्वरांत हैं ही, क्योंकि भले ही हिंदी में इनको व्यंजनांत हलंत बोला जाता है, जैसे राम, कृष्ण, विश्व, बालक आदि, किंतु लिखने में सर्वत्र स्वरांत ही लिखे जाते हैं। मति, दधि, भानु, गौ, धाता, भू, रमा, गौरी आदि शब्द तो स्वरांत ही हैं, किंतु राजन, पथिन, पंचन, अष्टन, राज, परिव्राज आदि शब्द भी हलंत या व्यंजनांत रह कर क्रमशः राजा, पथ, पांच, आठ, राज, परिव्राजक आदि रूप में स्वरांत ही हो गए हैं। इतना ही नहीं, जगत, भगवान, श्रीमन आदि शब्दों को भी स्वरांत ही बना दिया गया है, जैसे जगत, भगवान, श्रीमान आदि। इस प्रकार थोड़े से तत्सम शब्दों को छोड़कर शेष सभी हलंत शब्दों का विकास हिंदी में स्वरांत के रूप में हो रहा है। संस्कृत के संज्ञा रूप बनने में पहले विभक्तियों का प्रयोग होता था और विभक्तियां संज्ञा शब्द के साथ जुड़कर संज्ञापद बनाया करती थी। धीरे धीरे प्राकृत एवं अपभ्रंश कालों में आकर विभक्तियों के जुड़ने की प्रथा कम होने लगी और उनके स्थान पर संज्ञा शब्दों से पृथक पर सर्गों का प्रयोग होने लगा। परंतु हिंदी भाषा में आकर विभक्तियों का स्थान पूर्णतया परसर्गों ने ले लिया और परसर्गों के द्वारा ही कारकों का बोध होने लगा, जैसे कर्ता कारक संस्कृत और हिंदी, कर्ता यानी राम हिंदी में राम ने, कर्म जैसे रामम हिंदी में राम को, करण संस्कृत में रामेण हिंदी में राम के द्वारा या राम से, संप्रदान संस्कृत में रामाय हिंदी में राम के लिए या राम को, अपादान संस्कृत में रामात हिंदी में राम से, संबंध कारक संस्कृत में रामाय हिंदी में राम का, राम के, राम की इत्यादि, अधिकरण कारक संस्कृत में रामे हिंदी में राम पर इत्यादि। इस प्रकार संज्ञा के साथ विभक्तियों के जुड़ने की प्रथा समाप्त हो गई और हिंदी में आकर परसर्गों यानी विभक्ति चिन्हों का विकास हो गया, जिनके द्वारा विभिन्न संज्ञा पदों के कारकों का संकेत मिलने लगा। इतना ही नहीं, पहले संस्कृत में प्रायः संज्ञा पद बनाने के लिए किसी न किसी विभक्त चिन्ह का अवश्य ही प्रयोग होता था। यदि कहीं कोई विभक्त चिन्ह दिखाई नहीं देता था तो वहाँ विभक्ति का आगम मानकर फिर उसका लोप मान लिया जाता था। इस दृष्टि से संस्कृत के सभी संज्ञा पद विकारी हुआ करते थे, किंतु हिंदी में दो प्रकार के संज्ञा पदों का विकास हुआ है, अभिकारी और विकारी। अभिकारी संज्ञा पद हिंदी में वे कहलाते हैं जिनके साथ किसी भी परसर्ग का योग नहीं होता और जिनका मूल रूप जैसे का तैसा बना रहता है, और विकारी संज्ञा पद वे कहलाते हैं जो विभक्त चिन्हों या परसर्गों के योग से विकृत हो जाते हैं, जैसे अभिकारी घोड़ा, विकारी रूप घोड़े घोड़ों, अभिकारी लड़का, विकारी में लड़के लड़कों, अभिकारी में लड़की, विकारी में लड़कियां लड़कियों, अभिकारी में घर, विकारी में घरों, अभिकारी किताब, विकारी में किताबें किताबों। हिंदी के संज्ञा रूपों में एक प्रवृत्ति और विकसित हुई है कि जितने भी अकारांत इकारांत या उकारांत शब्द हैं उनके भूतकालिक एकवचन के प्रयोग में कोई विकार नहीं होता, किंतु हिंदी के जितने भी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं वे जब भूतकाल की क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वो एकवचन होते हुए भी विकारी हो जाते हैं, जैसे घोड़े ने कहा एकवचन, लड़के ने सोचा एकवचन। ऐसे ही हिंदी में संज्ञा शब्दों में एक और प्रवृत्ति विकसित हुई है कि उसके कतिपय अकारांत शब्द एकवचन या बहुवचन दोनों रूपों में अविकारी रहते हैं, जैसे बहुवचन में दिल्ली के घर पक्के हैं, एकवचन मेरा घर पक्का है, बहुवचन में वे मनुष्य कहाँ जाते हैं, एकवचन में वह मनुष्य जा रहा है, भक्तों के मन भगवान में लगे, जैसे मेरा मन भगवान में लगा। इस तरह अवधी भाषा में कर्ता कारक एकवचन और बहुवचन के रूप एक समान हो गए, जैसे घोड़ा खात अहे बहुवचन घोड़ा खात अहे, लड़का दौड़त अहे बहुवचन में लड़का दौड़त अहे, बर्धा जात अहे बहुवचन में बर्धा जात अहे। पर इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए अवधि में एक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ है कि वहाँ बहुवचन में नौ जोड़ा जाने लगा, जैसे गुणवन खात है लड़कवन दौड़त है बर्धवन खात अहे। अतः सिद्ध है कि यहाँ भाषाओं में संज्ञा रूपों का विनाश होता रहता है, वहाँ कितने ही नए नए संज्ञा रूपों का प्रायः विकास भी होता रहता है। ख सर्वनाम रूपों का विकास, हिंदी में संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के कारक रूप भी दो प्रकार के मिलते हैं, अविकारी और विकारी। जिन सर्वनाम पदों का मूल रूप वाक्य में ज्यों का त्यों रहता है वे अविकारी सर्वनाम पद कहलाते हैं, और जिनमें विभक्ति चिन्हों के लगते ही विकार उत्पन्न हो जाता है उन्हें विकारी सर्वनाम पद कहते हैं, जैसे अविकारी पद अविकारी अविकारी मैं, विकारी पद में मुझ मुझे मेरा मेरे, अविकारी तू, विकारी पद तुझ तुझे तेरा तेरे, अविकारी पद तुम, विकारी में तुम्हें तुम्हारा तुम्हारे, अविकारी हम, विकारी में हमें हमारा हमारे, अविकारी यह, विकारी में ये इस इसे इन इन्हें, अविकारी में वह, विकारी में वे उस उसे उन उन्हें इत्यादि, अविकारी में जो, विकारी में जिस जिसे जिन जिन्हें, अविकारी में कौन और विकारी पद में किस किसे किन किन्हें इत्यादि। दूसरे, हिंदी के सर्वनाम रूपों का निर्माण भी परसर्गों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में होता है, जैसे मुझसे, मुझको, मेरे लिए, मुझको, तुझसे, तेरे लिए, हमको, हमसे, हमारे लिए, हम में, तुम में, मुझ में, उनको, उनसे, उनके लिए, इसको, इसके लिए, इसमें, इस पर, इसका, उसमें, उसके लिए, उसको, उस पर, उससे, उसके द्वारा, इत्यादि। इस प्रकार संस्कृत की अपेक्षा सर्वनाम में हिंदी में सर्वनाम रूपों का पर्याप्त विकास हुआ है। ग, विशेषण रूपों का विकास। संस्कृत में प्रायः विशेषण के लिंग वचन कारक सदैव विशेष के अनुसार हुआ करते थे और यहाँ तारतम्य का बोध कराने के लिए तर तथा तम प्रत्ययों के प्रयोग से बने विशेषणों का प्रयोग होता था। दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना के लिए तर प्रत्यय से बने विशेषणों का प्रयोग किया जाता था, जैसे लघुतर, महत्तर, गुरुतर, बृहत्तर आदि, तथा सर्वोत्कृष्ट वस्तु या व्यक्ति की विशेषता के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग होता था, जैसे लघुत्तम, महत्तम, गुरुत्तम, बृहत्तम आदि। परंतु हिंदी भाषा में संबंध कारक को छोड़कर अन्य कहीं भी विशेषण में विशेष के अनुसार लिंग वचन कारक नहीं बदले तथा उनके रूपों का विकास स्वतंत्र एवं अविकारी रूप में होता है। इसके साथ ही तारतम्य का बोध कराने के लिए से परसर्ग के साथ कम अधिक विशेषणों का विकास हो गया है, जैसे तुलना के लिए से के साथ कम या अधिक का प्रयोग इस प्रकार होता है, जैसे शीला सीता से कम सुंदर है, मोहन राम से अधिक खाता है, श्याम को शीला से कम अंक मिले हैं, अलका को रागिनी से अधिक अंक मिले हैं। ऐसे ही अधिकतम या सर्वोत्कृष्ट संबंधी विशेषण विशेषता सूचित करने के लिए संस्कृत के तम प्रत्ययांत विशेषणों के स्थान पर हिंदी में सबसे के साथ कम या अधिक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। यह भी हिंदी का विशेषण संबंधी नूतन विकास है, जैसे योगेंद्र अपनी कक्षा में सबसे अधिक मेधावी छात्र है, शैलेंद्र परिवार में सबसे अधिक धनाढ्य है, धर्मेंद्र घर में सबसे कम बोलता है, ज्ञानेंद्र घर पर सबसे अधिक पढ़ता है। घ, क्रिया रूपों का विकास। संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि कई भाषाओं में क्रियाओं के अंतर्गत संज्ञा के लिंगानुसार परिवर्तन नहीं होते। वहाँ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में एक ही तरह की क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे संस्कृत में मोहन गच्छति यानी पुल्लिंग है, सीता गच्छति यानी स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में मोहन गोज यानी पुल्लिंग है और सीता गोज स्त्रीलिंग। बंगला में मोहन जाचे पुल्लिंग है और सीता जाचे स्त्रीलिंग। परंतु हिंदी में क्रिया संबंधी यह न्यूनतम विकास हुआ है कि यहाँ संज्ञा के लिंगानुसार क्रिया में भी लिंगों का प्रयोग होता है और लिंगानुसार क्रिया परिवर्तित होती रहती है, जैसे मोहन जाता है पुल्लिंग, सीता जाती है स्त्रीलिंग, पलक फड़कता है पुल्लिंग, नाक बहती है स्त्रीलिंग, हाथ चलता है पुल्लिंग, अंगुलियाँ चलती हैं स्त्रीलिंग। उपर्युक्त उदाहरणों में मोहन, पलक और हाथ पुल्लिंग अथवा उनके साथ क्रमशः जाता है, फड़कता है और चलता है क्रिया का प्रयोग भी पुल्लिंग में हुआ है। सीता नाक और अंगुलियां स्त्रीलिंग हैं, अतः उनके साथ क्रमशः जाती है, बहती है और चलती है क्रियाओं के प्रयोग भी स्त्रीलिंग में हुए हैं। दूसरे, संस्कृत में तो क्रियाओं के प्रायः संश्लिष्ट रूप ही अधिक प्रचलित थे, जैसे गच्छति, पठति, करोति, अस्ति, ददाति, दधाति आदि। प्राकृत काल में आकर क्रिया के तिगंत रूपों के स्थान पर कृदंत रूपों का प्रचलन आरंभ हुआ और सहायक क्रिया के साथ उनका प्रयोग होने लगा, जैसे अहि अच्छ आदि। परंतु हिंदी में इस प्रवृत्ति का अधिक विकास हुआ और अधिकांश क्रियाओं का प्रयोग कृदंत रूप के साथ सहायक क्रिया लगाकर होने लगा है। इस प्रकार संस्कृत की संश्लिष्ट क्रियाएं हिंदी में आकर विश्लिष्ट रूप में विकसित हुई हैं, जैसे संस्कृत में अहम पठामि, हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। संस्कृत में सः पठति, हिंदी में वह पढ़ता है। संस्कृत में त्वं पठसि, हिंदी में तू पढ़ता है। उपर्युक्त उदाहरणों में संस्कृत की पठामि, पठति और पठसि क्रियाएं संश्लिष्ट हैं, क्योंकि वे संयोगावस्था में हैं, जबकि हिंदी में पढ़ता हूँ और पढ़ता है क्रियाएं विश्लिष्ट हो गई हैं, क्योंकि इनमें पढ़ना कृदंत रूप है और है सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। हिंदी की क्रियाओं में यह वियोगावस्था वर्तमान काल तथा भूतकाल की क्रियाओं में अत्यधिक पाई जाती है, जैसे वर्तमान काल में राम जाता है, भूतकाल में राम जाता था। वर्तमान काल में मोहन खाता है, भूतकाल में मोहन खाता था। वर्तमान काल में सीता गाती है, भूतकाल में सीता गाती थी। उपर्युक्त उदाहरणों में जाता, खाता और गाती तो कृदंत रूप हैं, जो वर्तमान एवं भूतकाल में समान रूप से प्रयुक्त हुए हैं, किंतु है सहायक क्रिया वर्तमान काल की द्योतक है और था, थी सहायक क्रियाएं भूतकाल की द्योतक हैं। तीसरे, संस्कृत में विधि, आशय और क्रियात्पत्ति के लिए पृथक पृथक क्रियाओं का प्रयोग होता था, परंतु हिंदी में एक ही क्रिया उक्त तीनों भावों को व्यक्त करने के लिए विकसित हो गई, जिसके फलस्वरूप अब हिंदी में क्रिया के अधिक रूपों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे वह गुरुजनों का आदर करे, ये विधि है। पुत्र सुखी रहे, आशी है। वह घर आए, यानी आज्ञा है। यदि वह रात दिन पढ़े, ये क्रियात्पत्ति। अंग, अन्य रूपों का विकास। भारतीय अरब भाषाओं में जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों का नवीनतम विकास हुआ है, वहाँ इनके अतिरिक्त और भी कुछ नए नए रूप विकसित हुए हैं। जैसे ब्रिल का मत है कि अव्यकृदंत, कर्मवाच्य और क्रिया विशेषण संपूर्ण भारतीय परिवार की भाषाओं में नवीन विकास के अंतर्गत आते हैं। इनमें से अव्यकृदंत संबंधी क्रियापद तो नवीनतम विकास माने जाते हैं, क्योंकि इनके रूप सदैव एक से रहते हैं और इनमें पुरुष, वचन, काल, वाच्य आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता और ये अव्यय कृदंत संज्ञा की तरह तरह वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अंग्रेजी में टू ईयर इज ह्यूमन, दूसरा बर्ड्स लव टू सिंग, तीसरा टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इन आवर ड्यूटी इज आवर ड्यूटी, चौथा He refused to obey the orders. पांचवा, many men desire to make money quickly. उपर्युक्त प्रथम वाक्य में टू ईरर अव्यकृदंत कर्ता के रूप में, दूसरे वाक्य में टू सिंग अव्यकृदंत कर्मकारक के रूप में, तीसरे वाक्य में टू रिस्पेक्ट क्रिया होकर भी कर्ता कारक के रूप में, चौथे वाक्य में टू ओबे क्रिया के रूप में होकर भी कर्मकारक के रूप में, और पांचवें वाक्य में टू मेक क्रिया होकर भी कर्मकारक के रूप में संज्ञा की तरह ही प्रयुक्त हुई है। इसी तरह हिंदी में भी कतिपय अव्यकृदंतों का प्रयोग मिल जाता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ क्रियाएं संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने लगी हैं। जैसे घूमना एक सुंदर व्यायाम है, अधिक बैठना हानिप्रद होता है, सोना स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, पढ़ना एक गुण है, नाचना एक कला है। कर्मवाच्य का विवेचन पहले ही वाच्य के अंतर्गत किया जा चुका है। क्रिया विशेषण से तात्पर्य ऐसे पदों से है जो क्रिया को विशेषता बतलाया करते हैं, जैसे अंग्रेजी में क्विकली, वेरी, क्वाइट, बिफोर, नाउ, ऑलरेडी, ट्वाइस, ऑफेन, ऑलवेज, हियर, देयर, विथिन, अवे, हार्ड, एनफ, देयरफॉर, फॉर आदि, तथा हिंदी के ऐसा, इतना, ऐसे, जल्दी, जब, जहाँ, अब, यहाँ, धीरे, चुपके, चाहे, फट से, घड़ी घड़ी, घर घर, एकाएक, जब कभी, कुछ न कुछ, हर घड़ी, प्रतिदिन, यथास्थान, अनजाने आदि क्रिया विशेषण है। रूप विकार के कारण। प्रायः सभी भाषाओं में रूप विकार के दर्शन होते हैं, क्योंकि बहुत से प्राचीन रूप तो अनुपयोगी होने के कारण नष्ट होते रहते हैं और बहुत से नए नए रूप सभी भाषाओं में विकसित होते रहते हैं। रूपों के विनाश में विकास के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला, एकीकरण। मानव का यह सहज स्वभाव है कि वह बोलने एवं लिखने की बचत के लिए पदों के रूप में एक रूपता लाने का प्रयास करता है। उसकी इस एकीकरण की मनोवृत्ति के फलस्वरूप जो अधिक बलवान होते हैं वे तो स्थिर रह आते हैं, किंतु जो रूप दुर्बल होते हैं उनका सर्वथा विनाश हो जाता है। संस्कृत के पुत्रस, वायु और हिमवत रूपों के स्थान पाली भाषा में जो पुत्तस, वाउस और हिमवतस रूप मिलते हैं वह इसी एकीकरण के प्रवृत्ति के फलस्वरूप बने हैं। यही बात अपभ्रंश के उन रूपों में दिखाई देती है जो नपुंसक लिंग के हैं और पुल्लिंग के समान ही हो गए हैं। जैसे पुत्तु, नरु, देव आदि रूप तो पुल्लिंग के संज्ञा पद हैं, किंतु इनके ही समान एकीकरण की प्रवृत्ति के कारण फलु नपुंसक लिंग का रूप भी हो गया है। ऐसे ही हिंदी में संस्कृत के संपूर्ण हलंत शब्दों को स्वरांत बना लिया गया है और उनके अंतिम व्यंजनों का लोप कर दिया गया है, जिससे सभी अजंत एवं हलंत संस्कृत शब्द हिंदी में स्वरांत हो गए। जैसे राजा, करी, हाथी, राम, सीता, लता, स्वामी, पति आदि। दूसरा, सरलीकरण। प्रायः बोलने एवं लिखने में सरलता लाने के लिए जब मानवीय प्रयास होने लगते हैं तब भी रूप में पर्याप्त परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे संस्कृत में पहले तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तथा तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रचलित थे। इनके अनुसार ही संज्ञा पदों के रूप बना करते थे, किंतु प्राकृत एवं अभ्रंश काल से ही सरलीकरण की ओर झुकाव होने लगा। अतः हिंदी भाषा के निर्माण होने तक केवल दो लिंग, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग और दो वचन, एक वचन तथा बहुवचन शेष रह गए। इनमें से नपुंसक लिंग के शब्दों को भी पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग से ही सम्मिलित कर लिया गया। जैसे ज्ञान, जल, दधि, मधु, दिन, बल, धनुष, पुस्तक, फल आदि संस्कृत के नपुंसक लिंग वाले शब्दों में से ज्ञान, जल, मधु, दिन, बल, धनुष, फल आदि को पुल्लिंग मान लिया गया और पुस्तक को स्त्रीलिंग के अंतर्गत ले लिया गया तथा दधि से बने दही शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में होने लगा। जैसे दही मीठा है, दही मीठी है आदि। ऐसे ही द्विवचन के सभी शब्दों का भी बहुवचन में अंतर्भाव करके केवल एक के अतिरिक्त दो, तीन, चार आदि सभी वस्तुओं को बहुवचन के अंतर्गत मान लिया गया। ऐसे ही संस्कृत में दस गण, दस लकार, तीन पुरुष, तीन वचन तथा छह प्रयोग आत्मनि पद, परस्मै पद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के आधार पर कर दिया गया। प्रत्येक धातु के जो 540 रूप बना करते थे उनको भी सरल करके हिंदी में क्रिया के बहुत कम रूप हो गए हैं। इसी प्रकार संस्कृत में पहले विशिष्ट के अनुसार विशेषण के भी रूप लिंग वचनानुसार लगा बना करते थे, परंतु हिंदी में विशेषण को बहुत कुछ स्वतंत्रता मिल गई है और उसके अकारांत रूपों में विशिष्ट के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण अनेक रूपों में परिवर्तन हुआ है। तीसरा, उपमान या सादृश्य। भाषाओं में बहुत से रूपों का परिवर्तन उपमान या सादृश्य के कारण ही हुआ करता है। पहले संस्कृत में ही हलंत हस्तेन शब्द का तृतीय एकवचन में हस्तिनारूप बना करता था और अजंत, मति, पति, मुनि, भानु आदि शब्दों के तृतीय एकवचन में आ प्रत्यय लगने से मत्या, पत्या, मुन्या, भानवारूप बनने चाहिए थे, परंतु उपमान या सादृश्य ने ऐसा प्रभाव डाला है कि नकारात्मक हस्तिना की तरह ही उक्त इकारांत एवं उकारांत शब्दों के रूप भी क्रमशः मतिना, पतिना, मुनिना, भानुना आदि बोले जाने लगे। अब आश्चर्य यह है कि इन शब्दों के अंत में जब न है ही नहीं तो वह कहाँ से कूद पड़ा। यह केवल उपमान या सादृश्य की ही कृपा है। ऐसे ही अंग्रेजी में विल और शैल के भूतकालिक रूप वुड और शुड बनते थे, परंतु इनके ही सादृश्य पर कैन का भी भूतकालिक रूप कुड बनने लगा है, जबकि कैन में कहीं भी एल नहीं है। ऐसे संस्कृत भ्रातृ का रूपांतर अंग्रेजी में ब्रदर होना तो ठीक है क्योंकि त्रि से पूर्व उदात्त स्वर विद्यमान है, किंतु त्रि से पूर्व उदात्त स्वर के न रहते हुए पितृ का जो अंग्रेजी रूप फादर मिलता है वह एकमात्र उपमान या सादृश्य के आधार पर ही बना है। हिंदी में ऐसे दुख के सादृश्य पर सुख, निर्गुण के सादृश्य पर सरगुण, वय यानी वय के सादृश्य पर नय यानी नदी, रघुराई के सादृश्य पर नियराई, कौशल राव के सादृश्य पर प्रभाव, हय यानी हय के सादृश्य पर गय यानी गज, उर्वी यानी पृथ्वी के सादृश्य पर गुर्वी यानी गुरु आदि रूप भी परिवर्तित हुए हैं। चौथा, स्पष्टता। बहुत से रूप परिवर्तनों का कारण स्पष्टता लाने की मनोवृत्ति है, क्योंकि जब किसी भाषा के रूपों में एक रूपता आ जाती है अथवा विभिन्न कारकों में एक जैसे रूप प्रयुक्त होने लगते हैं तब उनमें स्पष्टता लाने के लिए कुछ न कुछ अंतर करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है और इसी के फलस्वरूप अनेक रूप विकृत हो जाते हैं। जैसे अवधि में एक वचन तथा बहुवचन के पहले एक से संज्ञा पदों का प्रयोग होने लगा था, जिससे रूपों में एकरूपता आ गई थी, और चोर, लड़का, गैया, बर्धा आदि रूप एक जैसे ही बहुवचन एवं एक वचन में बोले जाने लगे थे। किंतु फिर इनमें स्पष्टता लाने के लिए बहुवचन के रूपों में न परसर्ग जोड़ा जाने लगा, जैसे चोरन, लड़िकन, गैयन, बर्धन आदि। ऐसे ही हिंदी में कुछ शब्द एक वचन एवं बहुवचन में एक जैसे प्रयुक्त होते थे, जैसे कवि, भक्त, विद्यार्थी, पंडित आदि। अतः इनको बहुवचन के रूप में प्रयोग करने के लिए इनके आगे जन या लोग जोड़ने की प्रथा चल पड़ी, जैसे कवि जन या कवि लोग, भक्त जन या भक्त लोग, विद्यार्थी लोग, पंडित लोग आदि। इससे एक वचन और बहुवचन में स्पष्टता आ गई। ऐसे ही हिंदी भाषा भाषी बहुत से व्यक्ति अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं, जिससे हम बहुवचन होते हुए भी एक वचन में प्रयुक्त होने लगा है। अतः इसे बहुवचन के रूप में स्पष्ट करने के लिए हम के आगे भी लोग जोड़ा जाने लगा है, जैसे हम लोग प्रदर्शनी देखने गए। अतः स्पष्टता लाने के लिए कितने ही रूपों में विकार आ जाता है। पांचवा, बल प्रयोग। भाषाओं में बहुत से रूप विकारों का कारण बल प्रयोग भी है, क्योंकि बलाघात से जैसे ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही बल प्रयोग से रूपों में विकार आ जाते हैं। जैसे श्रेष्ठ शब्द स्वयं सबसे उत्तम का द्योतक है, किंतु कुछ लोगों की दृष्टि में यह सर्वोत्तम का वाचक नहीं, क्योंकि इनमें तम प्रत्यय कहाँ लगी है, जबकि इसकी इष्ट प्रत्यय भी तम का ही भाव प्रकट करती है। अतः किसी वस्तु को अत्यंत उत्तम बताने के लिए या तो श्रेष्ठतम कहा जाता है या सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है। इस प्रकार श्रेष्ठतम में इष्ट और तम दुहरी अतिशयवाची प्रत्ययों का प्रयोग विशेष बल देने के कारण ही होने लगा है। ऐसे ही अंग्रेजी में वेरी बेस्ट, मोस्ट ब्यूटिफुलेस्ट, मोस्ट फाइनेस्ट, वेरी वेरी वाइजेस्ट, मोस्ट स्वीटेस्ट आदि शब्द भी बल प्रयोग के कारण ही विकृत हुए हैं। ऐसे ही हिंदी में खालिस शब्द शुद्धता का वाचक है, परंतु अपनी किसी वस्तु को अत्यधिक शुद्ध बताने के लिए लोग ने खालिस कहकर नी द्वारा विशेष बल का प्रयोग करते हैं। इसी बल प्रयोग के कारण शुद्ध के स्थान पर विशुद्ध शब्द भी चल पड़ा है। ऐसे ही उत्तम शब्द स्वयं सबसे अच्छा का वाचक है, किंतु विशेष बल देने के लिए सर्वोत्तम बोला जाता है। यही बात घनिष्ठ शब्द के साथ हुई है, क्योंकि यह शब्द स्वयं बहुत घना का द्योतक है, फिर भी इस पर और बल प्रयोग करते हुए अत्यंत, बहुत, अधिक आदि शब्दों के साथ घनिष्ठ का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम और राम में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, मेरी और मोहन की बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है, योगेंद्र और ज्ञानेंद्र में अधिक घनिष्ठ स्नेह है आदि आदि। इस प्रकार अधिक उत्तम, अधिक श्रेष्ठ, अधिक घनिष्ठ आदि पर एकमात्र बल प्रयोग के कारण बनने लगे हैं। छठा, अज्ञान। बहुत से रूप विकारों का कारण अज्ञान भी है, क्योंकि भाषा के शब्दों की मूल प्रकृति, उनकी रचना पद्धति, उनकी बनावट, उनके व्याकरणिक रूप आदि से अपरिचित होने के कारण बहुत से व्यक्ति मनमाने ढंग से शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक रूप विकृत हो जाते हैं। जैसे आजकल उपर्युक्त के स्थान पर अज्ञान के कारण उपरोक्त शब्द पद चलने लगा है। ऐसे ही स्रष्टा के स्थान पर सृष्टा, द्रष्टा के स्थान पर दृष्टा, द्रष्टव्य के स्थान पर दृष्टव्य, श्रृंगार के स्थान पर श्रृंगार, अनुगृहित के स्थान पर अनुग्रहित, व्यंग्य के स्थान पर व्यंग, छात्र के स्थान पर छात्र, सहस्त्र के स्थान पर सहस्त्र, दर असल के स्थान पर दरअसल में, गुलरोगन के स्थान पर गुलरोगन का तेल, गुल मेहंदी के स्थान पर गुल मेहंदी का तेल, काबुल वाला के स्थान पर काबुली वाला, दयालुता के स्थान पर दयालुताई, सुंदरता के स्थान पर सुंदरताई आदि रूपों के विकार का कारण अज्ञान ही है। सातवां, नूतन अभिव्यक्ति। कुछ लोग नित्य नूतन अभिव्यक्ति के लिए नवनिर्मित शब्दों का प्रयोग करने में ही अपना अधिक कौशल दिखलाया करते हैं। इस नूतन अभिव्यक्ति की ओर अधिक प्रवृत्त होने के कारण बहुत से शब्दों का रूप अत्यंत विचित्र हो जाता है और रूप विकार को अवकाश मिल जाता है। जैसे हिंदी में सौंदर्य और माधुर्य शब्द तो पहले ही प्रचलित थे, किंतु इस नवीन अभिव्यक्ति के फलस्वरूप आजकल मृदुता के स्थान पर मार्दर्व, प्रचुरता के स्थान पर प्राचुर्य, प्रखरता के स्थान पर प्राखर्य का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। ऐसे ही उदारता के स्थान पर औदार्य, कुलीनता के स्थान पर कौलीन्य, सरलता के स्थान पर सारल्य, सुकुमारता के स्थान पर सौकुमार्य, सज्जनता के स्थान पर सौजन्य, सुकृति के स्थान पर सौकृत्य, सूक्ष्मता के स्थान पर सौक्षम्य, सुकरता के स्थान पर सौकर्य, सुगमता के स्थान पर सौगम्य, सुख के स्थान पर सौख्य, सुरसता के स्थान पर सौरस्य, सुलभता के स्थान पर सौलभ्य, सुशीलता के स्थान पर सौशील्य, सुष्ठता के स्थान पर सौष्ठव, अधिकता के स्थान पर आधिक्य आदि शब्द नवीनता के मनोवृत्ति के कारण ही प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे ही विशेष के स्थान पर विशिष्ट और विशेषता के स्थान पर विशिष्टता या वैशिष्ट शब्दों का प्रयोग भी नवीन अभिव्यक्ति का ही फल है। इधर नवीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप कतिपय नई नई क्रियाओं के रूप में निर्मित हो गए, जैसे स्वीकारना यानी स्वीकार करना, फिल्माना यानी फिल्म के रूप में प्रदर्शित करना, अनुकूलना यानी अनुकूल होना, बतियाना यानी बातें करना, मतिया यानी मत होना, रीतना यानी रीता होना, समोना यानी समाविष्ट करना, आशीषना यानी आशीर्वाद देना, प्रकटाना यानी प्रकट करना, हर्षाना यानी प्रसन्न करना, निमज्जना यानी निमज्जित होना आदि। ऐसे ही नूतन अभिव्यक्ति के लिए कितने ही नए नए विशेषणों के युक्त प्रयोग भी हिंदी में चल पड़े, जैसे बेटूट सूखी रे, तपती वासनाएं, स्वीकारी आंसू, शिलित रोमांच, अनथक गति, अचीर शरीर, उत्सृष्ट जीवन, मतिमाया सागर, अडूब उमड़ना, गुरु उदार छाए, लजीली कली, सहमी ठिठकी, प्यासी यादें, बासी सांसें, बेहया गड़ियां, अजाना पांत, निबिड़ वासना, निरंध्र करुणा, उन्मेष्ठा कवि, अनसुलज संस्कृति, द्रुत लहरीला जल, बिलमे छड़, आश्वस्त थिरक, सोधी खुदबुद, अनाप्त महामौन आदि ऐसे ही नवीन प्रयोग हैं जो नूतन अभिव्यक्ति के द्योतक हैं और जिनके फलस्वरूप नए नए शब्द रूप प्रकाश में आ रहे हैं। इसी प्रकार हिंदी में भी नूतन अभिव्यक्ति के फलस्वरूप ही पल्लवन, कुसुमन जैसे नए नए रूपों का भी प्रयोग होने लगा है। अतः नूतन अभिव्यक्ति के कारण भी नाना प्रकार के रूप विकार हुआ करते हैं। रूप ग्राम विज्ञान। भाषा विज्ञान के उस अंग को रूप ग्राम विज्ञान कहते हैं जिसमें भाषाओं के विविध रूपों का वर्गीकरण एवं विशेषण करके उनके अर्थ तथा वितरण के आधार पर रूप ग्राम एवं संरूप का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी में रूप ग्राम विज्ञान को मार्फेमिक्स कहते हैं तथा रूप ग्राम को मार्फीम एवं संरूप को एलोमार्फ कहा जाता है। इस रूप ग्राम विज्ञान में मुख्यतः उन शब्दों का ही वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जो परसर्ग अथवा प्रत्यय से युक्त होते हैं तथा जो व्याकरण में रूप या पद कहलाते हैं। ये रूप या पद ही वाक्य के अवयव होते हैं और इनके प्रयोग द्वारा ही कोई वाक्य किसी विशिष्ट अर्थ का द्योतक बनता है। ये रूप विविध प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ अविभाज्य होते हैं और कुछ विभाज्य। इनके योग से ही रूप ग्राम का निर्माण होता है और इन रूप ग्रामों के योग से संयुक्त रूप ग्राम या मिश्रित रूप ग्राम यानी कॉम्प्लेक्स मार्फीम बनते हैं। अतः रूप ग्राम विज्ञान में जहाँ अर्थ और वितरण के आधार पर रूप ग्रामों एवं संरूपों का निर्धारण किया जाता है, वहाँ इनमें होने वाले ध्वन्यात्मक परिवर्तनों एवं उन परिवर्तनों के आधारों पर भी विचार किया जाता है। रूप ग्राम का स्वरूप। सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता धारण करने के लिए परसर्ग, विभक्ति या प्रत्यय का सहारा लेता है तब उसे रूप या पद कहते हैं। जैसे राम, बाण, बाली, मारना आदि केवल सार्थक ध्वनि संपन्न शब्द हैं, किंतु जब इनका संबंध ने, से, को, आ आदि परसर्ग या प्रत्यय से होता है तब ये रूप बन जाते हैं और एक सार्थक वाक्य का निर्माण कर देते हैं। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा। अब यदि उक्त वाक्य का विभाजन अर्थ के आधार पर किया जाए तो इसमें राम ने बाण से बाली को मार आ आठ सार्थक खंड दिखाई देते हैं। वैसे यदि हम इस वाक्य के शब्दों को और भी विभाजित करें तो रा, मो, ने, बा, अड आदि अनेक खंड हो सकते हैं, किंतु ये खंड निरर्थक होंगे क्योंकि इनमें से अकेले रा, अकेले मो या अकेले बा और अकेले अड़ का कुछ भी अर्थ नहीं है, जबकि राम, बाण आदि का अर्थ है। जैसे राम व्यक्ति है, नेकर्ता कारक का चिन्ह है। बाण का वह साधन जिसे मारने का कार्य हुआ है से करण कारक का चिन्ह है। बाल एक व्यक्ति है जो कर्म कारक का चिन्ह है। मार क्रिया है और आ भूतकालिक क्रिया का चिन्ह है। इस प्रकार उक्त वाक्य में 8 सार्थक खंड हैं जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से वाक्य की सार्थक लघुतम इकाइयां और जिनको रूपग्राम कहा जाता है। अतः वाक्य की सार्थक लघुतम इकाई को रूपग्राम कहते हैं। रूपग्राम के भेद। साधारणतया रूपग्रामों का विभाजन उनकी रचना, उनके प्रयोग, उनके अर्थ, उनके संबंध एवं उनकी अखंडता तथा अखंडता के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार रूपग्रामों को सर्वप्रथम 4 आधारों पर विभक्त कर सकते हैं। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व के प्रदर्शन के आधार पर और चौथा खंडीकरण के आधार पर। पहला प्रयोग के आधार पर। सर्वप्रथम प्रयोग के आधार पर यदि रूपग्रामों का विभाजन करें तो रूपग्राम के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला क मुक्त रूपग्राम यानी फ्री मॉर्फीम। जो रूपग्राम पूर्णतया स्वतंत्र अथवा मुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें मुक्त रूपग्राम कहते हैं। जैसे मोहन रसोई घर में दूध पीता है। इस वाक्य में मोहन और दूध सर्वथा स्वतंत्र एवं मुक्त रूपग्राम है क्योंकि इनका प्रयोग बिना किसी अन्य रूपग्राम की सहायता से हुआ है। इनके अतिरिक्त रसोई और घर भी स्वतंत्र रूपग्राम ही हैं क्योंकि इनका प्रयोग भी वाक्यों में स्वतंत्र रूप में ही हो सकता है। जैसे रसोई बन रही है तथा घर साफ हो रहा है आदि। बद्ध रूपग्राम यानी बाउंड मॉर्फीम। जो रूपग्राम अकेले न आकर वाक्य में सदैव किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर प्रयुक्त होते हैं उन्हें बद्ध रूपग्राम कहते हैं। जैसे लड़के घरों से निकलकर लड़ाई कर रहे हैं। इस वाक्य में लड़के में ए, घरों में ओ, लड़ाई में आई आदि रूपग्राम शब्दों से पूर्णतया बद्ध होकर प्रयोग में आए हैं अतः ये बद्ध रूपग्राम कहलाते हैं। ग मुक्त बद्ध रूपग्राम यानी फ्री बाउंड मॉर्फीम। जो रूपग्राम देखने में तो सर्वथा स्वतंत्र और मुक्त होते हैं किंतु वाक्य में सदैव किसी न किसी शब्द के आश्रित होकर ही प्रयुक्त होते हैं वे मुक्त बद्ध रूपग्राम कहलाते हैं। जैसे हिंदी के का, ने, से, में आदि पर सर्ग स्वतंत्र लिखे जाते हैं किंतु किसी न किसी शब्द के आश्रित प्रयुक्त होते हैं। जैसे मोहन का घोड़ा जा रहा है, श्याम ने रोटी खाई, श्याम गाँव से आ रहा है, योगेंद्र छात्रावास में रह रहा है आदि। ऐसे ही अंग्रेजी के फ्रॉम, विथ, इन, इनटू आदि भी ऐसे ही रूपग्राम हैं जो स्वतंत्र दिखाई देते हैं किंतु किसी न किसी शब्द के आश्रित होकर ही वाक्य में प्रयोग होते हैं। जैसे अलका इज कमिंग फ्रॉम द हाउस, श्याम लिव्स विथ हर ब्रदर, दे लिव इन दिल्ली, द स्नैक क्रेव्ड इनटू द होल आदि। अतः ये सभी मुक्तबद्ध रूपग्राम हैं। दूसरा रचना के आधार पर। रूपग्रामों का विभाजन रचना के आधार पर 2 भागों में किया जाता है। क संयुक्त रूपग्राम यानी कॉम्प्लेक्स मॉर्फीम। जिन रूपग्रामों की रचना 2 या 2 से अधिक ऐसे रूपग्रामों से होती है जिनमें एक तो अर्थ तत्व होता है तथा शेष सभी संबंध तत्व होते हैं उन्हें संयुक्त रूपग्राम कहते हैं। जैसे हमारे घरों की सफाई होगी। इस वाक्य में हमारे घरों, सफाई और होगी संयुक्त रूपग्राम है क्योंकि इनकी रचना में क्रमशः हम, घर, साफ और होना तो अर्थ तत्व हैं और शेष सभी संबंध तत्व प्रयुक्त हुए हैं। यथा जैसे हमारे में हम है, धन आ, धन रे, घरों में घर, धन ओ, सफाई में साफ, धन आई और होगी में होना, धन गी। ख मिश्रित रूपग्राम यानी कंपाउंड मॉर्फीम। जिन रूपग्रामों की रचना 1 से अधिक स्वतंत्र अर्थ तत्वों से होती है अथवा जिनकी रचना 2 या 2 से अधिक अर्थ तत्वों से होती है उन्हें मिश्रित रूपग्राम कहते हैं। जैसे हमारे रसोई घर से स्नानागार निकट ही है। नगर पालिका में आज विधानसभा अध्यक्ष का भाषण होगा। कल राष्ट्रपति थल सेनापति, जल सेनापति एवं वायु सेनापति से विचार विनिमय करेंगे आदि वाक्यों में क्रमशः रसोई घर यानी रसोई, धन घर, स्नानागार यानी स्नान, धन आगार, नगर पालिका यानी नगर धन पालिका और राष्ट्रपति यानी राष्ट्र धन पति तो ऐसे मिश्रित रूप ग्राम है जिनका निर्माण दो स्वतंत्र अर्थ तत्वों से हुआ है तथा विधानसभा अध्यक्ष विधान धनसभा धन अध्यक्ष थल सेनापति यानी थल धन सेना धनपति जल सेनापति यानी जल धन सेना धनपति और वायु सेनापति वायु धन सेना धनपति आदि ऐसे मिश्रित रूपग्राम हैं जिनका निर्माण तीन तीन स्वतंत्र रूपग्रामों के मिश्रण से हुआ है। तीसरा अर्थ तत्व एवं संबंध तत्व के प्रदर्शन के आधार पर जब रूपग्राम केवल अर्थ तत्व अथवा संबंध तत्व को प्रदर्शित करते हैं तब इस प्रदर्शन के आधार पर रूपग्रामों के दो भेद होते हैं। क अर्थ तत्व प्रदर्शक रूपग्राम जो रूपग्राम वाक्य में केवल अर्थ तत्व के प्रदर्शक होते हैं उन्हें अर्थ तत्व प्रदर्शक रूपग्राम कहते हैं। जैसे संज्ञा राम बालक घोड़ा सीता लता आदि क्रिया में होना जाना उठना बैठना चलना हटना रटना इत्यादि तथा विशेषण में अच्छा बुरा नीला पीला भला दुष्ट काला आदि। ऐसे रूपग्रामों की संख्या सभी भाषाओं में अत्यधिक होती है और इन्हें व्याकरण की दृष्टि से प्रकृति धातु स्टेम रूट मस्तर या मद्दा भी कहा जाता है। ख संबंध तत्व प्रदर्शक रूपग्राम जो रूपग्राम वाक्य में केवल संबंध तत्व को ही प्रदर्शित करते हैं उन्हें संबंध तत्व प्रदर्शक रूपग्राम कहते हैं। जैसे संस्कृत की सु औ जस अम औट शस आदि विभक्तियां तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस ता अताम झा आदि तिगंत प्रत्यय तुमुन डुलु घंग अच मप नन की तिक्न क्विप अ युच आदि कृदंत प्रत्यय अड़ अड़या यंग्य अंग्य इकक यते आदि तद्धित प्रत्यय लिंग स्फक लिंग्श चाप उंग ति स्त्री प्रत्यय आदि। हिंदी के ने को से का मे पर आदि पर सर्ग अ अक्कड़ आ आईद आउ आका आईत आड़ी आला ओत आयत औता टी गा ता आदि देशी प्रत्यय ई दान वान खाना खोर गिरी ची बाजी बाज डम एक्शन आदि विदेशी प्रत्यय तथा अंग्रेजी की ईडी आईएनजी टी ई आर एस आईडी ई एन ए आर टी डी ओ एम एच ई ए डी एच डबल ओ डी के आई एन एल ई टी एल आई एन जी एन ई डबल एस आर ई डी आई एस एच एल ई एस 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 ओ एम ई ए टी ई ए बी एल ई ए जी ई ई ई आई एस एम एम ई एन टी टी आई वी ई आदि सफिक्सेस यानी प्रत्यय संबंध तत्व प्रदर्शक रूपग्राम हैं। चौथा खंडीकरण के आधार पर रूपग्रामों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण उनकी खंडता एवं अखंडता के आधार पर भी किया जाता है। इस दृष्टि से रूपग्रामों के दो भेद होते हैं। क खंडात्मक रूपग्राम यानी सेगमेंटल मॉर्फिम जिन रूपग्रामों के खंड किए जा सकते हैं अथवा जो तोड़कर पृथक किए जा सकते हैं उन्हें खंडात्मक रूपग्राम कहते हैं। जैसे लड़ाई यानी लड़ धन आई डाक खाना जैसे डाक धन खाना मित्रों यानी मित्र धन ओ आदि। ख अखंडात्मक रूपग्राम यानी सुप्रा सेगमेंटल मॉर्फिम जिन रूपग्रामों के खंड नहीं हो सकते अथवा जिनका पृथक पृथक विभाजन करना सर्वथा असंभव होता है वे अखंडात्मक रूपग्राम कहलाते हैं। बलाघात यानी जैसे स्ट्रेस सुर यानी जैसे टोन पिच तथा सुर लहर यानी इनोटेशन अखंडात्मक रूपग्राम होते हैं क्योंकि इनके खंड नहीं होते। रूपग्राम के संरूप बहुधा यह देखा जाता है कि कई रूपग्राम देखने में तो अलग अलग जान पड़ते हैं किंतु समानार्थी होते हैं। उनमें पारस्परिक कोई विरोध नहीं होता और वाक्य में उनके आने की वे स्थिति निश्चित रहती है तथा एक ही स्थिति में उनमें से एक से अधिक का प्रयोग नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में संज्ञा के बहुवचन बनाने के लिए स, ज, इज, इन, रिन, शून्य आदि कई रूप ग्रामों का प्रयोग होता है। जैसे स बुक्स, पॉट्स, स्कूल्स, रैट्स, कैट्स इत्यादि। ज यानी आइज, फ्लाइज, स्टोरीज, पोनीज, बेबीज, काउज इटीसी। इज जैसे हॉर्सेस, बसेस, ऑरेंज, ब्रिचेस, ब्रिज इत्यादि। इन जैसे ऑक्सन, ब्रदर्न इटीसी। रिन जैसे चिल्ड्रन इत्यादि। शून्य जैसे स्वाइन, शीप, टीयर, कॉड, ट्रॉट, सेलमन इत्यादि। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि स, ज, इज, इन, रिन रूपग्राम तो बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते ही हैं, किंतु कुछ शब्दों में कोई रूपग्राम नहीं लगता। वहाँ शून्य रूपग्राम होता है और वे शब्द भी एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। इन सभी रूपग्रामों का अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर यही ज्ञात होता है कि ये जब समानार्थी हैं और समानार्थी होने के कारण एक स्थान पर दूसरे के प्रयोग होने का भी संदेह होता है, परंतु ऐसा नहीं है। इन सभी रूपग्रामों का स्थान निश्चित है। जिस स्थान पर स्व का प्रयोग होता है वहाँ ज नहीं जा सकता। जहाँ पर इज का प्रयोग होता है वहाँ पर इन का प्रयोग नहीं हो सकता, अथवा जहाँ पर रिन का प्रयोग होता है वहाँ शून्य रूपग्राम का प्रयोग नहीं हो सकता। अतएव वितरण एवं प्रयोग की दृष्टि से सभी का स्थान पृथक पृथक विभक्त है। उक्त सभी रूप परिपूरक वितरण में है और इनका परस्पर कोई विरोध भी नहीं है, क्योंकि इन सभी रूपग्रामों का विशेषण करने पर ज्ञात होता है कि पहला, स रूपग्राम वहाँ आता है जहाँ स श के अतिरिक्त और कोई व्यंजन होता है। जैसे बुक्स, स्कूल्स, रैट्स आदि में क्रमशः स के पूर्व क यानी जैसे के, ल यानी एल और ट यानी टी व्यंजन आए हैं, अतः इसके पश्चात स रूपग्राम का प्रयोग हुआ है। दूसरा, ज रूपग्राम वहाँ आता है जहाँ अंत में आई, ई या औ ध्वनि होती है। जैसे आई ई वाई ई, फ्लाई एफ एल वाई के अंत में आई ध्वनि आई है, पौनी यानी पी ओ एन वाई और बेबी बी ए बी वाई के अंत में ई ध्वनि है और काउ सी ओ डब्ल्यू के अंत में औ ध्वनि विद्यमान। यही कारण है कि इनके अंत में बहुवचन के लिए ज रूपग्राम का प्रयोग हुआ है। तीसरा, इज रूपग्राम वहाँ आता है जहाँ शब्दों के अंत में स, श, ज और च ध्वनि हो। जैसे हॉर्स यानी एच ओ आर एस के अंत में स ध्वनि है, बुश यानी बी यू एस एच के अंत में श ध्वनि है, ऑरेंज ओ आर ए एन जी ई के अंत में ज ध्वनि है और ब्रिज बी आर डबल ई सी एच के अंत में च ध्वनि है, इसलिए इसके पश्चात इज रूपग्राम का प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए हुआ है। चौथा, इन रूपग्राम वहाँ आता है जहाँ पर ऑक्स, ब्रदर आदि कुछ निश्चित शब्द होते हैं। पांचवा, रिन रूपग्राम का भी प्रयोग चाइल्ड आदि कुछ निश्चित शब्दों के साथ ही होता है। शून्य रूपग्राम का भी प्रयोग स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्रॉट आदि निश्चित शब्दों के लिए ही होता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त रूपग्राम परस्पर विरोधी नहीं है, इनका वितरण परिपूरक है। ये विशिष्ट परिस्थितियों में ही आते हैं। एक रूपग्राम के स्थान पर दूसरा रूपग्राम नहीं आता और एक स्थिति में एक से अधिक रूपग्रामों का प्रयोग नहीं होता। अतएव उक्त संपूर्ण रूपग्रामों को एक ही रूपग्राम के संरूप कहा जा सकता है। इस दृष्टि से वे रूपग्राम किसी एक ही रूपग्राम के संरूप यानी एलोमार्फ कहलाते हैं जो समानार्थी होते हैं, जो एक ही प्रकार की रचना में प्रयुक्त होते हैं, जिनके प्रयोग होने की स्थिति पृथक पृथक होती है, जिनमें पारस्परिक विरोध नहीं होता, जो एक स्थिति में एक से अधिक प्रयुक्त नहीं होते अथवा जो परिपूरक वितरण में होते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में बहुवचन बनाने के लिए एक ही रूपग्राम के उपर्युक्त छह संरूप प्रचलित हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा में भी बहुवचन बनाने के लिए प्राय शब्दों के आगे जिन रूपग्रामों का प्रयोग किया जाता है वे सब एक ही रूपग्राम के विविध संरूप यानी एलोमार्फ होते हैं। जैसे ओ के लिए गौओं, बहुओं, माताओं, भ्राताओं आदि। ऊ लड़कों, घरों, चौबों, पुस्तकों, सड़कों आदि। यों यानी लड़कियों, कवियों, थालियों, हाथियों आदि। ए यानी लड़के, बेटे, घोड़े, फोड़े, जोड़े इत्यादि। ए बहुएं, गांवें, माताएं, धोतियाँ, शालाएँ आदि। आँखें, रातें, झीलें, बातें, गाय आदि। यहाँ जैसे नदियाँ, शक्तियाँ, थालियाँ, रानियाँ आदि। यहाँ बूढ़ियाँ, लुटियाँ, डिबियाँ, मिटियाँ आदि। शून्य अपर सर्ग के रूपों के लिए शून्य संरूप आता है, जैसे वे दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे अकारांत घर, इकारांत कवि, इकारांत हाथी, उकारांत साधु, उकारांत बालू आदि। पहला ओ। हिंदी में प्रायः देखा जाता है कि जितने भी सपरसर्ग शब्द अकारांत, उकारांत, अकारांत होते हैं, उनके बहुवचन बनाने में शब्दों के आगे ओ लगाया जाता है। आकारांत शब्दों में अंतिम वर्ण से पूर्व आ स्वर रहना चाहिए, तभी ओ लगेगा, अन्यथा ओ की मात्रा का ही प्रयोग होगा। जैसे लड़का से लड़कों, परंतु यह सभी आकारांत शब्दों के बहुवचन ओ लगाकर ही बनते हैं, जैसे माताओं, पिताओं, भ्राताओं आदि। उकारांत शब्दों में भी ओ लगाकर ही बहुवचन बनाया जाता है, जैसे साधुओं, वस्तुओं आदि। उकारांत सपरसर्ग शब्दों के बहुवचन बनाते समय उनको पहले उकारांत बना दिया जाता है और फिर ओ संरूप का प्रयोग होता है, जैसे बहु से बहुओं, भालू से भालुओं, डाकू से डाकुओं आदि। औकारांत में बिना परिवर्तन किए हुए ही ओ लगाया जाता है, जैसे गौओं, जौओं आदि। ओ हिंदी में सपरसर्ग अकारांत शब्दों में ओ न लगाकर केवल ओ की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे घरों, चौबों, पुस्तकों, सड़कों आदि। तीसरा यों। हिंदी के सपरसर्ग इकारांत शब्द के बहुवचन बनाते समय पहले उस शब्द को इकारांत बनाया जाता है और फिर यों संरूप जोड़ा जाता है, जैसे लड़की से लड़कियों, हाथी से हाथियों, साथी से साथियों, रानी से रानियों, थाली से थालियों आदि। चौथा ए। हिंदी के अपसर्ग अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूपों में अंतिम आ का लोप करके ए संरूप लगाया जाता है, जैसे लड़का से लड़के, बेटा से बेटे, घोड़ा से घोड़े, फोड़ा से फोड़े, जोड़ा से जोड़े आदि। पांचवा ए। हिंदी के अपर स्वर्ग आकारांत स्त्रीलिंग रूपों का बहुवचन बनाने के लिए ए संरूप जोड़ा जाता है, जैसे माताएं, शालाएं, अप्सराएं आदि। साथ ही अपर स्वर्ग इकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग रूपों का बहुवचन बनाते समय पहले तो इन रूपों को ह्रस्व कर लेते हैं और फिर अंत में ए संरूप जोड़ते हैं, जैसे धोती से धोतियें, प्याली से प्यालियें, बहु से बहुएं, लू से लुएं आदि। अपर स्वर्ग इकारांत स्त्रीलिंग रूपों में कुछ भी परिवर्तन न करके उनके अंत में ए जोड़कर बहुवचन बना लिया जाता है, जैसे वस्तुएं आदि। छठा ए मात्रा केवल। हिंदी के अपर स्वर्ग अकारांत स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन बनाने के लिए ए के स्थान पर केवल एक ही मात्रा का ही केवल प्रयोग होता है, जैसे आँख से आँखें, रात से रातें, झील से झीलें, बात से बातें, गाय से गायें आदि। सातवां या। हिंदी के अपर स्वर्ग इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप बनाने के लिए पहले उन्हें ह्रस्व करके इकारांत बनाते हैं और फिर या संरूप जोड़ा जाता है, जैसे नदी से नदियाँ, थाली से थालियाँ, रानी से रानियाँ आदि। किंतु इनमें से जो शब्द पहले से इकारांत होते हैं उनमें बिना कुछ परिवर्तन किए यहाँ जोड़ा जाता है, जैसे शक्ति से शक्तियाँ, कृति से कृतियाँ, वृत्ति से वृत्तियाँ, क्षति से क्षतियाँ आदि। आठवां हिंदी के उन अपर स्वर्ग स्त्रीलिंग रूपों के बहुवचन बनाते समय केवल चंद्रबिंदु लगाया जाता है, जिसके अंत में या होता है, जैसे बुढ़िया है से बुढ़ियाँ, लुटिया से लुटियाँ, टिबिया से डिबियाँ, बिटिया से बिटियाँ, लठिया से लठियाँ, खटिया से खटियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ आदि। नौवां शून्य। हिंदी के अपर स्वर्ग अकारांत यानी घर, दाम, आम, इकारांत जैसे कवि, मुनि, इकारांत जैसे हाथी, पक्षी, उकारांत जैसे साधु, ऊकारांत माने भालू, डाकू, एकारांत जैसे चौबे, औकारांत जैसे जव आदि शब्द में शून्य संरूप का प्रयोग बहुवचन बनाते समय होता है, जैसे घर, ये हमारे घर हैं। दाम, मैंने उसके दाम दुकानदार को दे दिए। आम, अब की बार आम बहुत पैदा हुए। कवि, मंच पर कवि बैठे हैं। मुनि, तपोवन में मुनि तपस्या कर रहे हैं। हाथी, भारत के जंगलों में हाथी अब कम मिलते हैं। पक्षी, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। साधु, गंगा में साधु स्नान कर रहे हैं। भालू, जंगल में भालू रहते हैं। डाकू, चंबल की घाटी के डाकू प्रसिद्ध हैं। चौबे, मथुरा के चौबे आ रहे हैं। जौ, मेरे खेत में जौ बहुत आए हैं। उक्त उदाहरणों में वे सभी शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं, किंतु उनमें किसी भी प्रकार का संरूप नहीं जुड़ा है, अतः यहाँ शून्य संरूप का योग माना जाता है। ऐसे ही चाचा, दादा, मामा, नाना, बाबा आदि पुनरावृत्ति वाले शब्दों में मुखिया, महाशय, महोदय, बहादुर, शास्त्री, देवी, साहब जी आदि युक्त आदर सूचक शब्दों में गण यानी कवि गण, पक्षी गण, देवता गण, जन जैसे कवि जन, मुनि जन, साधु जन, वर्ग यानी बंधु वर्ग, पाठक वर्ग, जाति से पशु जाति, मानव जाति, स्त्री जाति आदि से बने शब्दों में विवचन के लिए शून्य संरूप का प्रयोग होता है। अतएव इस प्रकार अंग्रेजी में बहुवचन बनाने के लिए ही एक रूप राम के 6 संरूपों का प्रयोग मिलता है, उसी प्रकार हिंदी में बहुवचन बनाने के लिए एक ही संरूप के 9 संरूप मिलते हैं, जिनमें अर्थ की दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है, जो परस्पर तनिक भी विरोधी नहीं है, जिनके लगने की स्थिति निश्चित है, जिनमें से कोई भी संरूप किसी अन्य के स्थान में प्रयुक्त नहीं हो सकता, और जो सबके सब एक ही प्रकार की रचना में अर्थात बहुवचन बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः उक्त सभी संरूप एक ही रूपग्राम एक ही हैं। इस प्रकार एक ही रूपग्राम के समानार्थी एवं परिपूरक वितरण वाले ये सभी संरूप की कोटि में आते हैं। रूप ध्वनिग्राम विज्ञान क, रूप ध्वनिग्राम विज्ञान की परिभाषा। प्रायः यह देखा जाता है कि 2 या 2 से अधिक रूपग्रामों के मिलने पर जब किसी एक रूप का निर्माण होता है, तब उन रूपग्रामों में विचित्र विचित्र परिवर्तन हो जाया करते हैं। जैसे हिंदी में घोड़ा और ऊ, इन 2 रूपग्रामों के योग से घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप घोड़ों बनता है, किंतु संबोधन कारक में जब हम घोड़ा शब्द का बहुवचांत रूप बनाते हैं, तब घोड़ों रूप बनता है। इस रूप में बनने में घोड़ा रूपग्राम में से तो आ का लोप हो गया है, और ओ रूपग्राम में से बिंदी का लोप हो गया है, और संपूर्ण रूपग्राम घोड़ों के स्थान पर घोड़ों का रूप बन गया है, जो रूपग्रामों के परिवर्तन की कहानी स्पष्ट बताता है। ऐसे ही अंग्रेजी में कैट और ज, इन 2 रूपग्रामों के रूप से कैट्स रूप बनता है, जिसमें कैट और ज के योग से कैट्स न बनकर कैट्स रूप बना है, जो स्पष्ट ही कैट और ज रूपग्रामों के परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है। ऐसे ही संस्कृत में इति और आदि 2 रूपग्रामों के योग से इत्यादि रूप बनता है, इसमें इति के ई रूप का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर यह आ जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन से इति और आदि के संयोग से एक नया परिवर्तित रूप इत्यादि बन जाता है। इस प्रकार उक्त रूपग्रामों में जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन हो गए हैं, उन्हें रूप ध्वनिग्रामीय परिवर्तन कहते हैं, और इस रूप ध्वनिग्रामीय परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन जहाँ किया जाता है, उसे रूप ध्वनिग्राम विज्ञान कहते हैं। अतएव रूप ध्वनिग्राम विज्ञान रूप विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रूपग्रामों के इन ध्वनि संबंधी परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जो 2 या 2 से अधिक रूपग्रामों का योग होने पर किसी शब्द, रूप, वाक्य या वाक्यांश से हुआ करते हैं।